This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But please remember that we do not address stock or company-specific queries. You can, of course, call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Gaurav Dhawan Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। और आज दिन शनिवार है और आज का दिन श्रोताओं के लिए समर्पित है। आप चाहें तो हमसे कोई भी सवाल अर्थ जगत से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित सीधा पूछ सकते हैं फोन करके। तीन टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 2331-44-44, 2342-10-50 और 2331-410-464। तीनों नंबर दिल्ली के, 011 एसटीडी कोड के साथ। इन नंबरों को डायल करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, नमस्कार।
And now let's begin today's edition with the headlines in English.
Thank you, Harsh and Shishir. Welcome to the program.
Thank you.
A quick look at the headlines. India and Greece reiterate their commitment to strengthen strategic partnership. India highlights its commitment to improving living standards by covering all dimensions of poverty at the International Labour Organization meeting. And on Wall Street, the Dow gains 0.7%.
भारत और ग्रीस ने आपसी रणनीतिक सहयोग और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में भारत ने गरीबी के सभी आयामों के बारे में महत्वपूर्ण प्रयासों में जीवन स्तर सुधारने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और अमरीकी बाजारों में डाउ जोन्स 0.7% मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और पश्चिम एशिया में विकास सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने हाल ही में उच्च स्तरीय आदान प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों में उत्पन्न गति की भी सराहना की। उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बातचीत के दौरान श्री मित्सोताकिस ने भारत में आम चुनावों के बाद श्री मोदी को उनके पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी है। ग्रीस के साथ बातचीत में ये एक महत्वपूर्ण पहल है, एक महत्वपूर्ण बातचीत रही है दोनों देशों के बीच में। और खास करके शिशिर, अगर हम आपसे बात करें कि ये जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बन रहा है, इसके बाद ट्रेड में बहुत वृद्धि होने की संभावना है और उसकी जो गति है वो भी काफी तेज है।
देखिए, व्यापारिक संबंधों को और नए बाजार को और बेहतर करने, विकसित करने के ऊपर इस सरकार का खास जोर रहा है, क्योंकि जो पारंपरिक बाजार है, चाहे वो आप यूरोप की बात कर लीजिए, चाहे आप खाड़ी के देशों की बात कर लीजिए, वहां पर हम जो स्थिति में पहुंच चुके हैं, उसके बाद जरूरत इस बात की है कि अगर हम अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहें तो आपके जो गैर पारंपरिक बाजार हैं उनके ऊपर हम किस तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और जब इस तरह की द्विपक्षीय वार्ता होती है और जब इस तरीके से व्यापारिक कॉरिडोर को विकसित करने की बात होती है, तो उसमें पहला जोर इसी बात पर होता है कि किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। और जब नए बाजार या वैसे बाजार जहां पर संभावनाओं का पूरी तरह से दोहन नहीं हो पाया है, वो ऐसे बातचीत में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिल्कुल। और चूंकि आज कॉलर्स डे है गौरा, हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमें कर्नाटक से फोन किया है। वीरेंद्र, आप कहाँ से बोल रहे हैं कर्नाटक से?
दिस इज बागलकोट सर, फ्रॉम कर्नाटका।
या प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन।
सर, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। प्रेजेंटली आई एम इन्वेस्टिंग अबाउट 10% ऑफ माय मंथली इनकम इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्सो एडिशनली आई एम एंटरिंग इनटू आईपीओस। आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर कपल ऑफ आईपीओस एंड आई गॉट द अलॉटमेंट। So I got confused between IPOs or stocks, which one is better? Thank you, sir.
Okay. I believe the IPO, you get the stock only in IPO, and when you are investing in mutual fund, you are getting units. So that's the basic difference. The second difference is when you are getting the shares under IPO, there is a possibility that you may have to pay face value plus premium. And when you are applying in the mutual fund through NFO, which is a what you can call it as the cousin of IPO and FPO in terms of the mutual fund, there you are getting at the face value, which is the 10 rupee. Now, whether you want to go more for IPO or whether you want to go more for the mutual fund, my advice would be that if there is a fundamentally strong companies, you should go for IPO. I mean, in terms of one or two startup, you can think about that. One or two traditional companies, you can think of that. And there you can invest some amount of money there. And in terms of mutual funds, since I believe that you are new in this market, so I would advise you to place part of your money also in the mutual fund, or rather bigger allocation than the IPO in the mutual fund. That will be certainly helpful.
We now move to Kolkata, from where we have Atanu. Atanu, please welcome to the program. Please ask your question.
Good evening. Sir, my first question is Shinnajani to everybody. Sir, why current consumption getting down? First. And second one, sir, how do we manage our income and expenses and keep some of money reserved aside? In this regard, one myth is very, that is, a crisis is the mother of all invention. So do we search alternative, or do we where we were and we are now? Thank you very much.
Mr. Saha, the first question about the consumption, let me tell you that in the urban area, as the finance ministry report is saying, that there is some moderation. It is not so dipping, which the other people are saying. So there is some moderation in the urban area, and there could be a number of reasons for that. One reason could be that lower increase in the salary. Other reason could be some inflation point also. And of course, in the rural area, we are finding that the consumption is picking up. So at this moment, Bharat is feeding India, and Bharat is giving much more impetus to the overall Indian economy growth. Coming to your second question, which is about how to get some reserve for the crisis, during the crisis period, my advice would be that when you are making money, when you are getting salary, when you are getting any kind of income, either from business or from your profession, any salary, just keep at least 30% of that, at least 30% of that in a fund, which you can call it as the contingency fund. And that 30% will certainly be helpful in the period like crisis. And we all know that a crisis is not something which comes after knocking the door. It can come without alerting you.
हमारे अगले कॉलर होंगे पंकज। पंकज नोएडा से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपका स्वागत है। क्या सवाल है आज का?
सर, मेरे दो सवाल हैं सर जी।
जी पूछें।
सर, पहला सवाल है कि मुझे शेयर मार्केट की पूरी अगर नॉलेज लेनी हो तो कोई इसकी बुक आती है या कि सिर्फ ऑनलाइन नॉलेज मिल सकती है?
ओके।
और मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे टाटा का ग्रुप है, उसमें SIP हमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं टाटा के कोई सा भी फंड में, तो SIP सर हम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी भी नॉलेज लेनी है, तो वो कैसे लेंगे सर?
दोनों सवाल आपके एक दूसरे से मिले हुए हैं, और बेसिक मूल सवाल ये है कि हम किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में तो नहीं बात करेंगे, चाहे वो टाटा का हो या किसी और कंपनी का हो, लेकिन शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज कैसे लें और कैसे इन्वेस्ट करें, शिशिर इसमें माहिर हैं, वो बताएंगे बहुत आसान तरीके से।
देखिए, शेयर बाजार की जानकारी लेनी हो तो सबसे जो अच्छा तरीका होता है कि आप जो सेबी है उसकी वेबसाइट पर एक एफएक्यू आता है और ग्लॉसरी आती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त में, एक रुपया भी आपको खर्च नहीं करना है। और शेयर बाजार के जितने टर्म्स हैं वो उसमें लिखे हुए हैं बहुत ही सरल भाषा में, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, उसके जरिए आप उन शब्दों से परिचित हो जाएंगे। उसके बाद आप यदि किसी भी बिजनेस चैनल को देखना शुरू करें या मार्केट मंत्र जैसे प्रोग्राम को सुनना शुरू करें, यहां पर हम लोग शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, शेयर बाजार की दैनिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं, शेयर बाजार की साप्ताहिक गतिविधियों पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ विदेशी बाजारों में क्या हो रहा है उससे भी चर्चा करते हैं, ताकि उसका भारतीय शेयर बाजारों पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले तो आपने क ख ग सीखना है, फिर क से शब्द बनाना यानी कि कलम बनानी है, और फिर उस कलम से आप अपने मुनाफे की इबारत लिख सकते हैं। रहा सवाल म्यूचुअल फंड का, देखिए किसी भी फंड को अगर आपने पैसा लगाना हो, आपके लिए बेहतर है कि आपको उसके एनएफओ में, एनएफओ एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे कंपनियां आईपीओ या एफपीओ लेकर के आती हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड एनएफओ लेकर के आती है, तो आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए।
न्यू फंड ऑफरिंग इसको बोलते हैं।
बिल्कुल, और न्यू फंड ऑफरिंग में करने के बाद आप जो है फिर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। देखिए याद रखिए, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो एग्जिस्टिंग फंड का होता है। पहले आपको एनएफओ में, अगर आपने शुरुआती करनी हो तो आप एनएफओ में थोड़ा सा निवेश करें, फिर जो फंड चल रहे हैं उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। कौन सा फंड पे करें, कैसे करें, अगर आप रविवार को मार्केट मंत्र सुनते हो जो म्यूचुअल फंड पर विशेष तौर पर केंद्रित होता है, वो आपको काफी हद तक जानकारी फंड विशेष की दे सकते हैं।
ये एनएफओ में करने की बात आप क्यों कर रहे हैं, अगर कोई चाहे सीधा किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके अपना चुन के उसमें सीधा कर सकते हैं।
देखिए दिक्कत क्या होती है कि आपको अगर मौजूदा फंड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और आप उसमें करंट एनएवी पे, जिसको हम लोग नेट असेट वैल्यू कहते हैं, जैसे शेयर का एक बाजार कीमत होता है उसी तरीके से हर म्यूचुअल फंड का एक नेट असेट वैल्यू होता है, उसकी अगर आप बहुत अच्छे तरीके से परख नहीं कर पाए तो जब एनएफओ कोई कंपनी लेकर के आते हैं तो काफी डिटेल में वो जानकारी देती हैं और उन जानकारियों के हिसाब से आप उस किसी फंड को परख करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप शुरुआत में थोड़ा सा पैसा लगाएं, जैसे आपके पास मान लीजिए कि 5,000-10,000 रुपए, उसमें आप एनएफओ में लगाइए और आपको यूनिट मिल जाता है तो आपको म्यूचुअल फंड से परिचय हो जाता है, उसके बाद आप एसआईपी पे जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
शिशिर, आपने बात करी अभी एक FAQ, frequently asked questions और ग्लॉसरी की, तो इसको जब डाउनलोड करना है तो इसको जैसे अपनी शब्दावली है आपकी, एक पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की वोकैबुलरी है, तो इसको कौन सी किसी साइट से करेंगे?
सेबी की साइट
जी, इसकी वेबसाइट का एड्रेस है sebi.gov.in, इस वेबसाइट से जाकर के आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से rbi.org.in, यहां पर भी जो आरबीआई की जो एफएक्यू और ग्लॉसरी है उसको डाउनलोड कर लें, तो शेयर बाजार और जो हम लोग कहते हैं ना कि कैपिटल मार्केट या अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए तमाम जो शब्द हैं उन शब्दों को समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद आपको अखबार पढ़ने हैं या आपको इस तरह के प्रोग्राम जो हम मार्केट मंत्रा की बात करते हैं जो सातों दिन उपलब्ध होता है, जिसमें से 3 दिन खास तौर पर श्रोताओं से सवाल जवाब का होता है, 1 दिन आपका म्यूचुअल फंड पे होता है, 5 दिन हम अलग अलग आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो आपके पास अगर शब्द आ जाएं तो आपको समझने में आसानी होगी।
जी बिल्कुल। We now welcome from Delhi, Nitin. Nitin, welcome. Please ask your question. And please, you need to switch down the volume. Nitin, please decrease the volume. Yeah, of your radio. Thank you. Please ask your question.
Hello, namaskar.
Namaskar.
जैसे कि अभी मैं आपका इसी सवाल को सुन रहा था, जवाब को सुन रहा था, कि यही एक मेरा सवाल रिटर्न में आपसे दोबारा से ये पूछना चाहूंगा, जो बिल्कुल शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में नहीं जानते हैं और सीधी भाषा में कहें तो जैसे ग्राम, हमारे देश में गांव काफी संख्या में है, वहाँ काफी लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते जो आपकी इंटरनेट चलाना आता है नहीं आता है, इसमें नहीं जानकारी रख पाते, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप शेयर मार्केट के कुछ एक्सपर्ट, क्या उनके लिए क्या हेल्प करने के लिए करना चाहते हैं कि मार्केट प्रोग्राम सुनने से काफी हद तक तो समझ में आता है पर टेक्निकल पॉइंट जो बातें होती हैं आप लोगों की वो उनको समझ नहीं आती। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो कहते हैं सिर्फ हम FD बैंक में जाते हैं, सीधे तरीके से जमा कर देते हैं और जाके हम सीधा सोना खरीदते हैं प्योर सोना, जिससे हमें खरीदने में और बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती, FD में जाते हैं बैंक में, मैच्योरिटी होने पर हम अपनी ले आते हैं और जमा कर आते हैं, तो इस बारे में आप कुछ एक्सपर्ट हमारे को राय देंगे कि क्या करें, और आज की तारीख में मैं सोना खरीदना चाहूँ तो बेनिफिट में रहूंगा, प्योर सोना खरीदूंगा, ना कि मैं कोई बना कुछ आइटम खरीदना चाहूँगा। धन्यवाद
जी। देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि जिस चीज की आपको समझ ना हो तो उसमें पैसा ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसा आपका अपना है और बड़ी मेहनत से आपने कमाई करी है, तो उसको यूं ही आप ना लगा दे जिसकी आपको समझ ना हो। तो अगर शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से आप बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में या फिर आप बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं। हाँ, आपके मन में यह भी हो सकता है कि अमुक आदमी इतना मुनाफा शेयर बाजार में कमा रहा है तो हम क्यों ना कमाएं, ये लालच हमेशा रहेगा। लेकिन याद रखिए, जैसा मैं बार बार कहता हूं, पैसा आपका अपना है, फैसला काफी सोच समझ करके करना है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा सोने को लेकर के, अभी सोने की कीमत काफी ज्यादा है, अगर सोना खरीदने का अगर समय कहा जाए तो वो नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
राइट, फ्रॉम बेंगलुरु मिस्टर एन आर प्रसाद। मिस्टर प्रसाद, यू आर लाइव नाउ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, वेलकम।
Good evening, Market Mantra.
Good evening.
This is N.R. Prasad from Bangalore. Gauran Dhan Lalji, Harsh Ranjanji, Mr. Sinha, wishing you all a very happy Diwali.
Thank you. Thank you.
Thank
very
you
much.
So thank much. You. Thank you, Ji.
Mr. Sinha, there are two questions. This week, market first 2 days rallied. In the next 2 days, Wednesday and Thursday, it fell down. Yesterday in the Muhurt trading, again it rallied maybe a little, about 335 points. Any specific reason for this? Is this a geopolitical problem is continuing? My second question is, in the next 2 months, say in the month of November and December, which sector can do well, especially between the IT, FMCG and the banking? There is one sub-question in this. Is this election result of the 2-3 states can influence the Indian stock market? Thank you. This is my two questions.
Okay. Is that 2.5 question? Anyway, coming to your first point about the market thing, let me tell you, I mean, the kind of uncertainty we are seeing at the geopolitical level may have subsided, but now people are taking money out from India and going to China. Also in US, if you see the data, I mean, we will have some information about the Dow also in the latter part of this program. We are seeing that in US, the yield is going up, number one. Number two, economic data are stabilizing. That means there are some good signs from the US. So people are taking out money from countries like India, what we call as the emerging market. So this could be one of the reason. Now talking about the Muhurat trading, which took place yesterday, what we in Hindi, we call it as the Bohni Achhi Hui Hai. Sambat 2081 ki Bohni Achhi Hui Hai. But the real thing we will see on Monday when the first formal trading will take place in the Sambat 2081. And that will certainly give the idea. But as of now, the market may not see much rise. Market will be slightly subdued during next 5 to 10 days. Coming to your second question about the November and December, which sector you think is the important one? In my understanding, the banking sector is going to give you a better return, because the banking sector, all the bank results have shown a very good result. And there the expectation is that they are also going to rise. IT sector will have some better days, but FMCG will have to wait, because the next 2 months there may not be much rise in their sales. So FMCG will be on the slightly on the back foot, but banking, then IT, and then you can think about the partial in the FMCG. Coming to your half question, which was the third one, how about the election result? I believe you are talking about Maharashtra and Jharkhand. See, every state assembly election has impact on the overall stock market, and that all depends upon which is coming into the power. Of course, the party which is in the center, if it is coming back in, say, Maharashtra, and if it is assuming power in Jharkhand, there will be a better rise in the market.
Right. So before we welcome our next caller, we'd just like to share our second headline story with our listeners. The 352nd governing body meeting of the International Labour Organization is underway at Geneva. It began on the 28th of last month and will continue till the 7th of this month. During the meeting, Labour and Employment Secretary Sumita Daura highlighted India's commitment to improving living standards, reflected in significant initiatives covering all dimensions of poverty. These have led to 248 million individuals escaping multidimensional poverty in the last 9 years, as measured by the Multidimensional Poverty Index. She also stated that employment growth within the country added around 170 million persons in economic activity during 2016-2017 and 2022-2023 as per provisional estimates. Ms. Daura also spoke about government initiatives like the PM Jan Dhan Yojana, which bridged the financial gap for the unbanked, while the PM Jeevan Jyoti Yojana and the PM Surakshana Bima Yojana offered an affordable life and accident insurance. Well, in the meeting, India emphasized that a convergent approach will ensure UN bodies operate more synergistically for fulfilling a shared vision of promoting social justice. And now, patiently waiting is Jitendra from Jaipur. Jitendra, please ask your question.
हाँ सर, नमस्कार सर. ये बोला था कि निफ्टी 50 में आईटी फर्मा और एफएमसीजी, क्या हम उसको थोड़ा सा परचेज करें? मेरा ऑलरेडी पहले परचेज किया हुआ क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन है, तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही, तो तीनों सेक्टर का आपका क्या विचार है?
ओके, देखिए निफ्टी 50 की बात करें या ओवरऑल मार्केट की बात करें, मेरे हिसाब से आईटी कंपनी, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि आईटी कंपनी में संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं, आप उसमें कर सकते हैं और थोड़ा अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं जब लोअर प्राइस हो, आपको एवरेजिंग करने का अच्छा मौका मिला है अगर आपने पहले ऊंची कीमत पर खरीद रखा है तो. फार्मा सेक्टर देखिए ऑल टाइम जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी एक विडंबना देखिए कि जब कभी भी देश में कोई बीमारी होती है तो दवा कंपनियों की चांदी हो जाती है और जो लेबोरेटरीज हैं उनकी भी चांदी हो जाती है. यह भी एक विडंबना है, लेकिन शेयर बाजार के निवेशक के तौर पे कहें तो वो एक अच्छी स्थिति होती है क्योंकि उनको फायदा होता है. अभी के समय में फार्मा में बहुत ज्यादा मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप आईटी में जो अपना एक्सपोजर जो है वो बढ़ा सकते हैं अगर आप लोअर प्राइस पे अगर आपको वापस और खरीदने का मौका मिले तो.
बैंकिंग और एफएमसीजी में भी अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा है तो कर सकते हैं.
मेरे ख्याल से एफएमसीजी में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि एफएमसीजी में एक अगर आपने अभी गौर किया होगा कि तमाम एफएमसीजी कंपनियों ने कहा कि खरीद के मामले में उस तरह की बढ़ोतरी देखने को नहीं,
थोड़ा सा कम हुआ.
बिल्कुल, खासतौर पर शहरी इलाकों में. इसीलिए हमने, आपको याद होगा प्रशांत साहब के क्वेश्चन में, मैंने खासतौर पर जिक्र किया कि एफएमसीजी में आप अभी थोड़ा कम एक्सपोजर करें, बैंकिंग में मेरे हिसाब से संभावनाएं ज्यादा बेहतर है.
आईटी और बैंकिंग सेक्टर की पैरवी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी हर शेयर को बेहद सोच समझ कर और पढ़ाई के कर.
पैसा आपका अपना है
और मेहनत
जरूर से उसको, उसके ऊपर थोड़ा मेहनत कीजिए, वो आपको और फायदा देगा.
अगले कॉलर योगेश दिल्ली से जुड़े हुए. योगेश, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछने आप प्लीज.
बिल्कुल, नमस्कार. दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, धनतेरस की और भाईदूज की बहुत बहुत बधाई सबको.
थैंक यू जी.
जी
सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारा इंडेक्स है और ये भारत में इतने सारे फॉरेन के इन्वेस्टर निवेश करते हैं, इसका कारण एक तो क्या है मुझे ये जानना है, दूसरा मैंने थोड़ा आरएनडी करा था तो मैंने ये पाया कि कैक का जो इंडेक्स है फ्रांस का और जो फुटसी इंडेक्स है या जो और बहुत सारे अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स हैं जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां के इंडेक्सों ने इतने मामूली रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल में 28%, पिछले 10-20 साल में भी उन्होंने 100% के आसपास दिए हैं, तो ये भारत में इतने ज्यादा रिटर्न कैसे आ रहे हैं?
ओके योगेश जी, देखिए बहुत, आपने अगर पिछले 5-7 साल या यूं कहें कि हम अगर एक थोड़ा और टाइम होराइजन बढ़ा दें तो आपको पता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे, उभरती हुई बाजार के तौर पर देखा जाता है और विदेशी निवेशकों के लिए ये आकर्षक इसलिए रहा क्योंकि यहां पर आपको कम कीमत पर शेयर मिल जाते रहे हैं, तो इसी वजह से आप रिटर्न जो देखेंगे वो विदेशी निवेशकों का अच्छा रहा है. लेकिन ये ना भूलिए कि विदेशी निवेशकों की जगह पर अब जो घरेलू निवेशक हैं वो बाजार में ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि डीएफआईज जो हैं वो एफआईआईज के मुकाबले ज्यादा कहीं बेहतर खरीदारी कर रहे हैं, ज्यादा कहीं बेहतर स्थिति में. तो पहले कहा जाता था कि अगर अमेरिका में जो है वो छींक आई है तो भारत में बुखार लग जाता था शेयर बाजार में, अब स्थिति ऐसी नहीं है, अब यहां पर घरेलू निवेशक भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं और ये शेयर बाजार के लिए एक शुभ खबर है.
पंकज अगले कॉलर मुंबई से. पंकज स्वागत है आपका, क्या सवाल है?
गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एग्जिटिंग फ्रॉम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स. व्हेन इज देयर एनी फार्मूला और इज देयर एनी वे इन व्हिच वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज व्हेन द मार्केट गोज अप वी फील कि और ऊपर जाएगा, इट विल गो फर्दर अप, एंड देन इट कम्स डाउन देन वी फील सैड कि वी शुड हैव बुक्ड अर्लियर. So is there any way in which we maximize our profits and we exit at the right time, at least some shares in which we are getting profits? Thank you.
Okay, Pankaj, this is a most difficult question to give a timeline that when you want to exit from any particular stock. I always advise that book profit in installment. Whenever you are getting an opportunity, sell part of your holding and book the profit. Rather than waiting for the appropriate time to maximize the profit, that time is something very difficult to define. Because whenever you are earning 100 rupees, you think, oh, let me earn about 120 rupees. And when you are earning 120, you think about 150. So please go for the what we call as the EMI, EMI in terms of profit booking.
Coming to Arjun from Gurugram. Arjun, your question, please.
Thank you. Namaskar, sir.
Namaskar.
Sir, मैं आपका कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ. सर, आप शेयर मार्केट का ऐसा कोई काउंटर नहीं होना चाहिए. हर बैंक में एक काउंटर होना चाहिए जिसमें हर आदमी जाए और आसानी से शेयर मार्केट की जानकारी और लेन देन करने की वहाँ काम हो सके. आपने दो शब्दों में अपनी बात रख दी. 140 करोड़ देश में कितने लोग शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप खुद जानकारी रखते हैं, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अर्जुन जी, देखिए, जो हमारे देश में शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या समझनी होती है तो हम डीमैट अकाउंट का नंबर देखते हैं, जो लगभग 17 करोड़ है. तो 144 करोड़ की आबादी वाले देश में 17 करोड़ शेयर बाजार के लिए संख्या बहुत ही छोटी है. लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि शेयर बाजार को समझना इतना आसान नहीं है. इसमें थोड़ा वक्त लगता है, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. एक दिक्कत क्या आती है कि अगर आपको समझ में ना आए और अगर आपका एक बार नुकसान हो गया तो आप दोबारा शेयर बाजार जाते नहीं हैं. तो पहले बाजार को जितना समझ सकते हैं, जितना उसके ऊपर अपने ज्ञान को और बेहतर कर सकते हैं, तब जाइए शेयर बाजार में. आपका जो सुझाव है कि हर बैंक में काउंटर होना चाहिए, ये इतना संभव नहीं है. और हर बैंक में क्या होता है कि उसकी अपनी एक डिवीजन होती है जिसको हम लोग सिक्योरिटीज या कैपिटल मार्केट डिवीजन कहते हैं. वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं. लेकिन मेरी आपकी सलाह, आपको यही सलाह होगी कि जब जिस चीज की आपको समझना हो, आप उसमें पैसा ना लगाएं. पहले आप अपनी समझ को बेहतर कर लें और फिर लगे कि चलो हम जोखिम उठा सकते हैं, तब आपको बाजार में जाना चाहिए.
और बैंकों में जो सिक्योरिटीज के काउंटर या उनकी अलग यूनिट होती है, जैसे आईसीआईसीआई में, आईसीआईसी डायरेक्ट है, एचडीएफसी में, उनकी कोशिश हमेशा ये होगी कि आप उनके साथ डीमैट खोलें और तभी आपकी वो मदद.
और चूंकि वो बड़े, एक तरीके से ये भी होता है ना कि हर किसी के लिए ऐसे काउंटर्स को डील करना जो है वो संभव नहीं है.
जी,
तो इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि पहले आप अपनी समझ भी तो विकसित करिए. और बहुत सारे साधन है आजकल, हम लोग जिस दौर में है, इंटरनेट के दौर में है, साधन और जानकारी किसी की कमी नहीं है. कमी है सिर्फ हमारी कोशिश की.
Absolutely.
करेंगे तो वो समझ में आ जाए.
एब्सोल्युटली राइट. सो वी टेक अ क्विक लुक एट द यूएस मार्केट्स. ऑन वॉल स्ट्रीट, की इंडिसीज एंडेड हायर यस्टरडे विद amazon.com शेयर्स रैलिंग फॉलोइंग द कंपनी स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, व्हाइल 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स हिट अ 4-month हाई एज इन्वेस्टर्स ग्रू वेरी ऑफ बाइंग बॉन्ड्स बिफोर द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन ट्यूजडे. द बेंचमार्क 10 ईयर यील्ड्स वर लास्ट अप 7.7 बेसिस पॉइंट्स at 4.361%, the highest since July the 5th. Amazon.com shares jumped 6.2% after its report late on Thursday. It also indicated that it expected healthy results in the holiday quarter. And so the Dow climbed to 89 points or 0.7% to end at 42,052. The S&P 500 added 23 points or 0.4% to close at 5,729. And the Nasdaq Composite rose 145 points or 0.8% to 18,240.
आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब वक्त समाप्त हो रहा है. तमाम कॉलर्स हमसे जुड़े, आपने अपने सवाल पूछे, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया. और खास तौर पर हम शिशिर सिन्हा को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. आप आए स्टूडियो में, अपने श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए.
धन्यवाद.
और कार्यक्रम खत्म करें इससे पहले हेडलाइंस एक बार फिर.
एब्सोल्युटली. एंड शिशिर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम.
थैंक यू.
एंड नाउ लिसनर्स, अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. इंडिया एंड ग्रीस रीइटरेट देयर कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. इंडिया हाईलाइट्स इट्स कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स बाय कवरिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी एट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग. And on Wall Street, the Dow gains 0.7%. That's it in today's program. Namaskar.
Namaskar.